ذاتا اور ذو ایک ہی فیملی کے ہیں اور یہ اپوسٹروفی کی طرح کام کرتے ہیں عربی زبان میں جیسے انگریزی میں اپوسٹروفی کام کرتا ہے. مذکر اور مؤنث ہے ذو اور ذات. العصف کیا ہے؟ العصف والریحان, اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں. عصف اور ریحان کیا ہے؟ ایک اوپینین یہ ہے کہ جو بیج ہے حب, عصف ایک سیڈ کیا کرتا ہے, میسو ٹری میں کنورٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. عین صوت فا ایک بہت ہیوج درخت کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دھیان کرانا چاہ رہے ہیں. آپ ذرا خوبصورتی دیکھیں, آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 12 تک آپ کو بیلنس کا ایک خوبصورت گراف نظر آئے گا. آیت نمبر 5 شروع ہوئی تھی سورج اور چاند سے, پھر بات آئی تھی نجم کی, سورج اور چاند آسمان پر, ستارہ بھی آسمان پر. پھر اللہ نے آپ کو اور میرا دھیان کرایا تھا السما پر, اس پورے ہورائزن پر جو ہمارے سر کے اوپر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دھیان کرایا تھا پھر آگے کیا آیا تھا, انسان. انسان آیا تھا نا, ستارہ آیا, آسمان آیا, آسمان سے میزان آیا, اور میزان سے پھر بتایا گیا انسان. انسان کے بعد زمین کو بتایا کہ زمین اور زمین کے اوپر موجود پھل. اب اللہ تعالیٰ زمین کے بھی اندر چلے گئے, دانا, سیڈ. ہر چیز اس کائنات کی پرفیکٹ بیلنس میں ہے اور انسانیت کو سرو کر رہی ہے. صرف انسان ہے جو بار بار اپنے رب کی فرما برداری سے دامن چھڑا کر دور جاتا ہے. عصف والریحان کے اندر, ریحان کے اندر ایک مفہوم آتا ہے, عصف کہتے ہیں بہت میسو ہیوج ٹری کے لیے, اور ریحان کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو پھول آتے ہیں, جو پھول پھل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور جو اس پھل کی پھر خوشبو ہوتی ہے. تو ایک میننگ ہے وہ دانا جو میسو ٹری میں کنورٹ ہو جاتا ہے عصف والریحان, اور پھر اس سے پھول بنتا ہے, اس پھول سے پھر پھل بنتا ہے. دوسرا میننگ عصف والریحان کا یہ ہے کہ یہ فصلوں کے لیے بولا گیا ہے, وہ دانا جو فصل گرو کرتا ہے. عصف والریحان کہتے ہیں وہ فصل, وہ کراپ جو پوری پک کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو پروڈکٹ آنی تھی وہ آ گئی. عصف والریحان بہترین پکچر ہے ایگریکلچرل لینڈ کی. اللہ نے دانے میں, گرین میں صلاحیت دی ہے کہ اگر اس کو پراپر نرشمنٹ ملے تو وہ گرو ہوتا ہے, نرش کرتا ہے, اور خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے گرو ہونے میں, اس لیے کہ آگے بڑھتا ہے زندگی میں اور اپنی سراؤنڈنگ کو, مخلوقات کو فائدہ دیتا ہے. اگر کبھی آپ نے سفر کیا ہو بائی روڈ آٹم سیزن میں, جس بیفور ونٹر, فرام کراچی ٹو لاہور, تو آپ کو فارمز آفٹر فارمز ملتے ہیں براسیکا کے, سرسوں کے. اور اگر آپ سرسوں کے کھیت میں چلے جائیں تو آپ کو اس پورے انوائرمنٹ میں ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے, ایک سینٹ ہوتی ہے بہت پیاری سی. محسوس کرنے کی بات ہے نا, فون چھوڑیں گے تو محسوس کریں گے, کانوں میں سے ایئر فونز نکالیں گے تو محسوس کریں گے, ذرا لمبی والی سانس لیں گے تو محسوس کریں گے, اچھا والا انہیل کریں گے تو محسوس کریں گے. عصف والریحان ایک ایسے ایگریکلچرل لینڈ کی تصویر ہے جس میں فصل تیار کھڑی ہے اور بہترین طریقے سے اس پر پھول آیا ہوا ہے, اور اس پھول کی وجہ سے جو کھیتوں کے کھیت ہیں اس نے پورے انوائرمنٹ میں ایک خوبصورت سی خوشبو پھیلا دی ہے. Relate this example with human being from individual to the collective level. جب ایمان آپ کے دل میں ایک بیج کی طرح آتا ہے اور آپ اس ایمان کو نرش کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ, تو آپ کے کردار میں نیک اعمال کے, نیکیوں کے پھل لگتے ہیں. جب آپ کے کردار میں نیکیوں کے پھل لگتے ہیں تو آپ کے کردار کی خوبصورتی, آپ کے کردار کی خوشبو آس پاس کے لوگ محسوس کرتے ہیں. ہر چیز میں رحمان نے آپ کے اور میرے لیے سبق دیے ہیں, ہر قدرت میں آپ کے اور میرے لیے لیسن موجود ہے, ہر لفظ کے اندر ایک مسلمان کے لیے سمجھنے والی گہرائی چھپی ہوئی ہے. جب بہت سے مسلمان ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسلام کے فرائض پر عمل کرتے ہیں, फितरत पर जिंदगी गुजारते हैं तो जैसे एक पूरी क्रॉप खड़ी हो जाती है, फसल खड़ी हो जाती है, ऐसे ही उस माशरे में नेक लोगों की वजह से पूरी सराउंडिंग फसाद से बच जाती है, बैलेंस और जस्टिस वहां कायम हो जाता है। खूबसूरती अपनी जगह होती है, बैलेंस और जस्टिस अपनी जगह होता है। अल्लाह चाहता तो जो हमें फसल देता, जिस फसल से हम अपने न्यूट्रिएंट्स को ग्रो करते या खाने को ग्रो करते, जरूरी नहीं था वो खूबसूरत भी होती, लेकिन अल्लाह ने खूबसूरत फसल दी है। मुसलमान का जन्नत में पहुंचना मुमकिन नहीं है जब तक उसके इखलाक की खूबसूरती उसके किरदार का हिस्सा ना बन जाए। तो आपकी और मेरे लिए बेहतरीन सबक है जो रहमान ने बताया है, अल्लाह ने तुमको नेमतें दी जो देखने में, स्मेल करने में और खाने में बेहतरीन है। देखने में तुम्हारी आंखों को ठंडा करती हैं, जायके में बेहतरीन होती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं और तुम्हारी आंखों को भली लगती हैं। इसी तरह से एक इंसान घर में कुरान की तालीमात को अपने अंदर मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है, एक इंसान माशरे में कुरान की चलती फिरती तस्वीर बनने की कोशिश करना शुरू कर देता है, खूबसूरती फैलती है, खूबसूरती फैलती है। और यही चीज मुझे और आपको सूरह रहमान के जरिए सिखाई जा रही है। अब आगे जो सूरह रहमान में मुकाम आ रहा है आयत नंबर 13 का, ये वो हार्ड क्वेश्चन है जो अल्लाह ताला ने इस सूरत में बहुत यूनिक वे में 31 टाइम्स रिपीट किया है। इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, फावी आई आला इरब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे, यानी नेमतों की नाशुक्री पर बात आ रही है। पिछला पूरा आयत का चंक आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 12 तक अल्लाह ताला ने अपनी मुख्तलिफ क्रिएशंस पर बात की। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें गिनवाई जो इंसान की जिंदगी का कॉन्स्टेंटली हिस्सा है। अल्लाह ने कुरैश को सर की आंखों से देखने के लिए बहुत से ऐसे मोजज़ात की तरफ अटेंशन उनकी करवाई जिसको अगर वो गौर करते तो हर नेमत में एक मोजज़ा एम्बेडेड था। और अल्लाह ताला ने बता दिया कि इतनी नेमतें होने के बावजूद इंसान नाशुक्रा है, तकदीब करता है, झुटलाता है, नाकदरी करता है, इनग्रैटिट्यूड का मुजाहिरा करता है। इससे पहले कि मैं इस आयत की तफसीर आपके सामने रखूं, क्या जनरली आज के इंसान, मेजॉरिटी इंसान नाशुक्र हैं? क्या हम नाशुक्र हैं? हम नाशुक्र हैं। और ये नाशुक्रापन हमारे लिए आज इतना ज्यादा जिंदगी का हिस्सा बन गया है कि हम अपनी नाशुक्री को नाशुक्रा समझते भी नहीं। हम कहते हैं कोई भी नहीं, मैं नाशुक्री थोड़ी कर रही हूँ। आप बच्चों से कहते हैं बेटा बी ग्रेटफुल, वो कहते हैं किस बात पे? हाँ, इसलिए कि हमारे लिए हर चीज जो दुनिया है, आज की दुनिया कई पॉइंट ऑफ व्यू से इजी वर्ल्ड बन गई है। नेमतें मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स द इजी वर्ल्ड नाउ। आपको चीजें बहुत आसानी से मिलने लग गई, और खासतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अब जहां पर तरक्की करके इंसान पहुंच गया और अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें जहां नेमतों के अंदर रखा है, याद रखें नेमतों का हिसाब बहुत सख्त है। हम अल्लाह को क्या हिसाब देंगे अपनी आंख की नेमत का? इसलिए कि इस आंख की नेमत का हक ये है कि इससे कोई वो चीज ना देखी जाए जिसको रब और शरीयत ने मना किया है। हम क्या अपना कान का हक अदा करेंगे? इस कान का हक ये है कि हम अपने कान में वो कोई आवाज ना सुनने दें, कान तक ना जाने दें जिसको शरीयत ने और अल्लाह ने मना किया है। आपकी आंखें, आपके कान और आपकी जुबान आपके दिल के दरवाजे और खिड़कियां हैं। अगर हमने इनकी हिफाजत नहीं की, अगर हमने यहां गार्ड्स नहीं बिठाए, हमारा दिल करप्ट हो जाएगा। और जब दिल करप्ट होते हैं तो इंसान हिदायत से, फितरत से, शुक्र से दूर हो जाता है। और जब वो फितरत और शुक्र से दूर होता है तो नाशुक्रा होता है। इस वक्त पूरी ह्यूमैनिटी में, जिस वक्त इंसानियत जहां खड़ी है, हम वो इस वक्त जनरेशन है कि हमारे पास इस वक्त कंफर्ट और कन्वीनियंस अपनी एक्सट्रीम पर है। हमसे पहले किसी नस्ल को इतना कंफर्ट और इतना कन्वीनियंस नहीं मिला था। आप अपनी, अगर मैं अगर अपनी नानी को सोचूं, दादी तो मैंने अपनी देखी नहीं, अगर मैं अपनी नानी को सोचूं, आई डू रिमेम्बर मेरी दादी के पास सिल थी. यू रिमेम्बर दैट सिल, वो पत्थर पर जो चटनी बनाते थे. हम में से बहुत लोगों ने कभी उस पर कुछ भी नहीं किया. हमारे बच्चे, आप बच्चों से पूछें, बेटा ये भी कोई चीज होती है? वो कहे हैं ये क्या होता है, इस पर रख के क्या करते हैं, इस पर खड़े होकर कुछ करते हैं? कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आज हम जहां खड़े हैं, और हम खासतौर पर वो जनरेशन जो इस वक्त बिटवीन 30 to 50 है, ये जनरेशन खासतौर पर वो जनरेशन है जिसमें हमने अपने नानी दादियों के थोड़े से टफ लाइफ स्टाइल देखे हैं, और अब हम अपने बच्चों का सुपर लग्जोरियस स्टाइल देख रहे हैं. हम वो बीच की इस वक्त जनरेशन है. कंफर्ट और कन्वीनियंस में आज की जनरेशन अपने क्लाइमेक्स पर है, और अल्लाह ने यकीनन इंसान को अकल दी है कि इंसान ने इस दुनिया को इतना हार्नेस कर लिया है कि हम इस कंफर्ट और कन्वीनियंस तक पहुंच चुके हैं. दुनिया इजीली अचीवेबल है, दुनिया आपके एक क्लिक पर मौजूद है. आप एक जगह बैठकर पूरी दुनिया की खबरें सुन लेते हैं. आप अपने लाउंज में बैठकर अमेरिका में बैठी अपनी अम्मी से बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे वो आपके सामने बैठी हैं स्काइप कॉल. आपके लिए इस वक्त दुनिया को एक क्लिक में देखना कि कहाँ दुनिया में इस वक्त बारिश हो रही है, कहाँ तूफान आ रहा है, कहाँ सुनामी आया हुआ है, कहाँ इस वक्त कौन सा फंक्शन हो रहा है, सो इजी फॉर एवरी वन ऑफ अस. सेटेलाइट सिस्टम ने सब कुछ आसान कर दिया. मोर ओवर 3G 4G ने जिंदगी को और ज्यादा कन्वीनियंस की तरफ धकेल दिया है. लेकिन इस कंफर्ट और कन्वीनियंस की वजह से आप ये देख रही हैं कि जहां चीजें खरीदना आसान हो गई हैं, जहां दुनिया हासिल करना आसान हो गया है, जहां दुनिया आसानी से मिल रही है, वहां नेमतों की कदर कम से कम, कम से कम, कम से कम होती जा रही है. ये नेमत का उसूल है. जब बगैर मेहनत के नेमतें मिलती हैं तो इंसान को उसकी वैल्यू नहीं आती है. हमारे बच्चों के कमरे, छोटे बच्चे जिनके हैं, हमारे बच्चों के कमरे किसी टॉय शॉप से कम नहीं है. लेकिन आपके बच्चे कितने कंटेंट हैं उन खिलौनों के ऊपर, ये आप बता सकते हैं. एक एक बच्चा PSP एक्सबॉक्स की 40 गेम्स हैं उसके पास. आप में से जिन लोगों को एक्सबॉक्स की गेम्स का पता है, 40 गेम्स का मतलब पता है? खेल भी नहीं सकता पूरी गेम्स. बाद बच्चे वैसे खेल भी लेते हैं पूरी पूरी रातें जाग जाग के, 6-6 दिन और 7-7 दिन. एक खिलौना आप लाकर देते हैं, कितने दिन तक उस खिलौने की कदर बाकी रहती है? शायद विद इन फ्यू आवर्स वो किसी सोफे के नीचे बेचारा कहीं पड़ा हुआ होता है. अम्मा उसकी कहीं से टांग उठाकर लाती हैं, कहीं से सेल निकाल के लाती हैं. अम्मा कहती हैं, बेटा मैंने इतने प्यार से ला के दिया था, तो और क्या, बस यूज कर लिया, अब मुझे वो वाला चाहिए अम्मा. जितनी तेजी से नेमतें मिलेंगी उतनी तेजी से उसकी कदर कम से कम होती चली जाएगी, और ये हो रहा है. और इसका एक और नुकसान हो रहा है, एक तो नेमत की कदर नहीं है, दूसरा नुकसान इसका ये हो रहा है कि इंसान कॉन्स्टेंटली सिर्फ अपने आप को एंटरटेन करने की फिक्र में लगा हुआ है. बस किसी तरह मैं खुश हो जाऊं, मेरी दुनिया हर वक्त मेरी मर्जी की रहे, मैं जैसे चाहूं वैसे जिंदगी गुजारूं. ये एक बड़ा नुकसान है जो इंसानियत इस वक्त ऑब्जर्व कर रही है, इसलिए कि नेमत बगैर मेहनत के मिल रही है. यहां जितनी माएं बैठी हैं, तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिजास्टर है माओं के एंड से कि बच्चा जिस वक्त जो चीज डिमांड करे आप उसके हाथ में पकड़ा दें. इससे बड़ा कोई डिजास्टर नहीं है. बच्चा जिस वक्त जो चीज डिमांड करे आप उसके हाथ में पकड़ा दें. आप बच्चा नहीं पाल रही, आई एम टेलिंग यू, आप मॉन्स्टर पाल रही हैं. वो बच्चा कल को ना आपकी कदर करेगा, नेमतों की कदर तो उसने करनी नहीं है, वो आपकी भी कदर नहीं करेगा, और उसके बाद वो दुनिया में किसी इंसान की कदर करना नहीं सीख सकेगा, बिकॉज उसको दुनिया में विंडो शॉपिंग की आदत नहीं होगी. हम बच्चे थे तो हमें विंडो शॉपिंग का कॉन्सेप्ट समझ आता था. आज के बच्चे विंडो शॉपिंग नहीं करते. अम्मा कहती चलो बेटा विंडो शॉपिंग करते हैं. क्यों? मुझे जो पसंद आएगा वो आप दिलाएंगी, या अम्मा को बहाने से ले जाएंगे, इसलिए उनको पता है अम्मा ट्रैप हो जाती हैं विंडो शॉपिंग के नाम पे, फिर वहां लेट जाएंगे जमीन पे. दिला देना, अच्छा अच्छा 1 महीने तक कुछ नहीं मांगूंगा, 6 महीने तक कुछ नहीं मांगूंगा, दिला देना. ये हो रहा है.
और जब ये हो रहा है और माएं इतने नरम दिल हैं माओं के, ये सच बताइएगा, आपकी अम्मी का दिल इतना नरम था? अब ऐसे हाँ ये भी सही है, इतना नहीं मांगते थे बट मांगते थे, मैं अगर रिकॉल करूं तो मांगते थे, ऐसी बात नहीं है, बट हमारी अम्माएं डिसिप्लिन थी, उनको तरबियत करनी आती थी।